हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 33। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके शुद्ध हृदय और पवित्र बुद्धि से गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सकणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिभे। वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 9 श्लोक नंबर 33। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, किं पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। किं पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। किं पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। शब्दार्थ, किम पुनर्ब्रह्मण पुण्या, किम यानी क्या या कितना, पुनः फिर, ब्रह्मण यानी ब्राह्मण, पुण्य यानी धर्मात्मा, भक्ता राजर्षयस तथा भक्ता यानी भक्तगण, राजर्षि अर्थात साधु राजे तथा भी अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य मतलब नाशवान, असुखम मतलब दुखमय, लोकम यानी लोक को, एमम यानी इस, एमम प्राप्य भजस्वमाम, एमम यानी इस लोक को प्राप्य यानी प्राप्त करके, भजस्व यानी प्रेम भक्ति में लगे लगो, माम मेरी। अनुवाद, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है, अतः इस क्षणिक दुखमयी संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य है तथा असुखमय यानी दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमयी घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु श्रीमद् भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमयी है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमयी है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुमार राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमयी है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगु लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान आज बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान अभी अपनी भक्ति की महिमा के विषय में बता रहे हैं। जैसे कि भगवान ने कहा श्लोक नंबर 29 में समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वैसे तो मेरे लिए सब कोई बराबर है, ना मैं किसी का पक्षपात करता हूँ और ना ही किसी को द्वेष करता हूँ, परंतु जो भक्ति करते हैं वो मेरे हो जाते हैं और मैं भी उनका बन जाता हूँ। तो उसके बाद भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भक्ति करने के लिए क्या क्वालिटी। भगवान ने कहा कोई नहीं, आप पीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भक्ति करने के लिए केवल यही योग्यता है कि आप भक्ति कर रहे हो, भगवान की शरण में आए हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो। अगर वो मेरी भक्ति करता है फिर चाहे चांडाल ही क्यों न हो,
साधु रेव समन्तव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह नमे भक्ति भक्तः प्रणश्यति। वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसके बाद मानो अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि भगवान, क्या आपकी भक्ति करने के लिए आवश्यक है कि उच्च कुल का व्यक्ति हो या फिर ना शूद्र हो, ब्राह्मण हो, स्त्री, क्या कोई वर्ण और जाति का कोई भेदभाव है क्या आपकी भक्ति में? तब भगवान उत्तर देते हैं कि नहीं अर्जुन, माम ही पार्थ व्यापाश्रित ये पे स्यु पाप योनयः। अगर पापी योनि में भी किसी ने जन्म लिया है, यदि किसी ने अपने किसी के बुरे कर्मों के अनुसार उसने किसी अधम योनि में जन्म लिया हो, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तेपि यान्ति पराम गति। वैसे शास्त्र कहता है कलो शूद्र संभव, इस कलयुग में सभी शूद्र हैं, सभी शूद्र हैं। अगर देखा जाए शूद्र का क्या काम है? अपने स्वामी को संतुष्ट करना। और यहाँ पर क्या है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सब किसी न किसी को संतुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं। तो शास्त्र कहता है कलो शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं। तो भगवान ने कहा चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी परम गति को प्राप्त करेंगे। फिर अर्जुन की ओर निहार के भगवान कहते हैं, तुम तो राजा हो। अर्जुन को बोला, अब तो राज ऋषि हो, राजा बनकर भी ऋषियों जैसा स्वभाव है आपका, सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो गए हो। तो आज भगवान अर्जुन की ओर निहार के कहते हैं, किम पुनर्ब्रह्मण पुण्य भक्ता राजा शयस्तथा, मेरी शरण में आकर तो पाप होने वाले स्त्री वैश्य शूद्र भी परम गति को प्राप्त करते हैं, फिर तुम्हारे जैसे राजर्षि और पवित्र ब्राह्मणों का क्या कहना। अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा था, जब श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट हुई थी तब चैप्टर नंबर 2:7 में अर्जुन ने भगवान से कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढसीता यश्वेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तिहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपण दुर्बलता के कारण मेरा स्वभाव जो है वो समाप्त हो गया, मेरी नेचर जो है उसको मैं भूल गया हूँ और मैं अपने कर्तव्य को भुला दिया मैंने। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि अभी वास्तव में मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है? यह श्रेय यानिश्चितम ब्रोहितन में, जो मेरे लिए श्रेय है वो निश्चित रूप से मुझे बताइए। मुझे खुद से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भी भूल गया हूँ और सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ, अब आपका शिष्य हूँ। यह सुनने के बाद भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले कर्म योग की शिक्षा दी कि यदि तुम अर्जुन कार्य करोगे मेरे प्रसन्नता के लिए तो वो कार्य तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं बनेंगे। और उसी कार्य को अब भगवान भक्ति योग में प्रवृत्त करके बता रहे हैं। अर्जुन को कहा, यत करोषि यदश नासी यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण, आप जो भी कर रहे हो उसे मुझे अर्पण करते चलो। और आज भगवान अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि तुम पूछ रहे हो ना तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठकर है, तुम इस संसार में आ गए हो, वास्तव में हम सबका प्रश्न होना चाहिए भगवान से। एक हर एक व्यक्ति को गीता में इस प्रश्न को ढूंढना चाहिए कि यह जो संसार है जिसके लिए भगवान कहते कहते नहीं थकते, कभी बोला माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार तो दुखालय है अशाश्वत है, तो फिर इसके अंदर तुम आए हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं आज के श्लोक में कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य है ये सुख, ये जो भौतिक जगत है इसके अंदर कोई सुख नहीं है, अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है इटर्नल नहीं है, ये समाप्त हो जाने वाला है। और क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा की क्वालिटीज क्या है, यह शाश्वत है, अजन्मा है, सनातन है। और इस भौतिक जगत के लिए भगवान कहते हैं अनित्य, यानी कि बिल्कुल अपोजिट। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती और यह जो भौतिक जगत है अनित्य है, ये समाप्त हो जाने वाला है। तो शास्त्र कहता है जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, उसी क्वालिटीज की वस्तु को प्राप्त करके आप आनंदित हो सकते हो। इसी शास्त्र कहता है न अल्पे सुखम, जो इस भौतिक, ये जो भौतिक जगत है वो अल्प है, अनित्य। भगवान कह रहे हैं, हम अनित्य पे बात कर रहे हैं, भगवान ने कहा ये समाप्त हो जाने वाला है, तो इस संसार से कोई भी वस्तु जो है वो समाप्त हो जाने वाली है, और हर वस्तु और हर व्यक्ति समाप्त हो जाने वाला है, तो वो कभी भी आत्मा को आनंदित नहीं कर सकता, वो आत्मा को वास्तविक आनंद प्रदान नहीं कर सकता। जैसे इस संसार में हम सोचते हैं ना कि ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, कोई कोई व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो सोचते हैं ये व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा अनित्यम, ये तो अनित्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, याद है श्लोक नंबर 5.22 में बताया था, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एव थे। संस्पर्श जाब होगा, जो इंद्रियों से के स्पर्श से जो आनंद प्राप्त होता है वह तो दुख योनय एवते, एवते का मतलब होता है वो निश्चित रूप से आपको दुख प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भगवान ने कहा कि आद्यंतवंत कौनते नतेषु रमते भुजा, उसका आदि होता है और उसका अंत होता है, ये स्टार्ट होता है और फिर समाप्त हो जाता है। जब स्टार्ट होता है तो मैं भी थोड़ा सा आनंद प्राप्त हो, लेकिन भगवान ने कहा दुख योनय एवते, वो तो निश्चित रूप से आपके दुख का कारण बनेगा। तो जिस समय वो प्राप्त हो रहा होता है उस समय भी कहीं न कहीं दुख होता है, लेकिन वो दुख क्योंकि सुख की चादर ओढ़ के आता है, इसलिए हम उस सुख को, दुख को नहीं देख पाते, सिर्फ सुख को रियलाइज करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सुख समाप्त हो जाता है क्योंकि उसका अंत है। भगवान ने कह दिया अनित्यम, इस भौतिक जगत में कोई भी सुख इटर्नल नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा, और फिर जब वो समाप्त हो जाएगा तो आप पुनः दुखी हो जाओगे। और दूसरी डेफिनेशन देते हैं इस भौतिक जगत की, असुखम। असुखम मतलब बिल्कुल सुख नहीं है, असुखम का मतलब होता है दुखमय, सुखम मानी सुख और असुख मानी दुख। तो इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक जिससे आप प्रेम करते हो, हर एक वस्तु या हर एक व्यक्ति आपके दुख का कारण बनेगा, ये भगवान ने कह दिया। हम ऐसे नहीं सोच सकते, आज देखो हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो सब लोग अपने लिए सुख का साधन ढूंढ रहे हैं ना इस भौतिक जगत में। जब से जीव पैदा होता है तब से वो सुख का साधन ढूंढ रहा है। छोटा सा बच्चा अभी जिसका बर्थ हुआ होता है तभी भी वो माता के स्तन में दूध को ढूंढता है कि मुझे उससे आनंद आएगा। उसके मन में ये है कि इस भौतिक जगत में मैं आया हूँ और मुझे आनंद प्राप्त करना है मुझे, और अभी ये वस्तु नहीं है मेरे पास, इसके कारण मैं दुखी हूँ, फिर ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी फिर पुनः सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान ने यहाँ पर कहा असुखम, इसके अंदर मैंने सुख रखा नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है जिसमें हम रहते हैं जिसमें अर्जुन खड़ा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और भगवान कहते हैं ये जो लोग हैं वो अनित्य है और असुख है। भौतिक जगत में हम क्या सोचते हैं कि अभी हम इस सिटी में रहते हैं, ये दूसरे सिटी में चले जाएंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सोचते हैं इंडिया चले जाएंगे तो सुखी हैं। जो उल्लास में सोचते हैं वो सोचते हैं बॉम्बे में चले जाएंगे तो सुखी होंगे। जो बॉम्बे में रहते हैं वो सोचते हैं अमेरिका चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये केवल मन का भ्रम है, क्योंकि ये संसार बनाया भगवान ने है और भगवान स्वयं कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम। ये अनित्य संसार है। अनित्य का मतलब कैसे है, जैसे एक सपना, आप सपना देखते हो, सपने में एक कैदी, जो कैदी होता है कैद में होता है, सुबह शाम उसको दंड मिल रहा होता है, पनिशमेंट मिल रही होती है, लेकिन रात को वो सपने में सो जाता है और सोते समय वो स्वप्न देखता है कि मैं राजा बन गया हूँ और मेरी बहुत ही सुंदर रानी है, मेरे बहुत अच्छे संतान है, बहुत बड़ा महल है, सब नौकर चाकर हैं, मेरे आज्ञाकारी हैं। वो ऐसे सोच रहा है, बहुत ही सुंदर ड्रीम लाइफ होती है उसकी, लेकिन उस वास्तव में वो क्या है, कैदी है। वो कैद में पड़ा हुआ है और कैद में होने के कारण वो दुखी है, लेकिन क्योंकि वो स्वप्न देख रहा है तो वो अपने आप को आनंदित, उसमें वो आनंद भोग रहा होता है। वास्तव में तो सपना जो होता है वो मिथ्या होता है, लेकिन जिस भौतिक जगत की रियलिटी को समझाने के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा अनित्य, अनित्य मतलब जो समाप्त हो जाएगा, जैसे ही सुबह होगी उसकी आंखें खुलेंगी तो सपना समाप्त तो हो जाएगा और वो जो ना राजा रहेगा, ना राजधानी रहेगी, ना प्रजा रहेगी, ना रानी रहेगी, ना ऐश्वर्य रहेगा, ना वैभव रहेगा, उसे याद आ जाएगा कि मैं तो कैदी हूँ, कितना दुखी हूँ। उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में एक बड़े से स्वप्न की तरह जी रहे हैं। वास्तव में हमारा शाश्वत शरीर है जो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में स्वप्न अवस्था में है और आज हमारी आत्मा इस भौतिक जगत में कैद हो गई है। अभी हम कैद हो गए हैं तो हम वास्तव में हम दुखी हैं। दुख का कारण ये नहीं है कि इस भौतिक जगत में हमारे पास धन नहीं है या फिर घर नहीं है या गाड़ी नहीं है या एजुकेशन नहीं या सुंदरता नहीं, दुख का कारण ये नहीं है। आप देखिए, जिसके पास धन भी होता है ना वो भी दुखी है, जिसके पास ज्ञान भी है वो भी दुखी है, जिसके पास सुंदरता है वो भी दुखी है। इस संसार में आप किसी को भी ला के देखो, किसी को भी देखने में हमें ऐसा लगता है ना, भ्रम है ये, बहुत बड़ा भ्रम है। हमें ऐसा लगता है वो सुखी हो गया है और हमें भी सुखी होना है। और सबसे बड़ी हमारे लिए बदनसीबी क्या है, आजकल बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रचारक निकले हैं, मतलब अलग अलग वो टाइप से प्रचार करते हैं और बोलते हैं अगर आपको कैंसर हो जाएगा तो एक मंत्र को पढ़ो आपका कैंसर दूर हो जाएगा, अगर आपको ये रोग हो जाएगा, ये दुख हो जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होता, ये मंत्र पढ़ो बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर आपको ये, आपके सारे दुखों का सॉल्यूशन पेपर में लिख कर दे देते हैं और आपको बोलते हैं बस आप इसकी भक्ति करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है कि ये नहीं है इसलिए दुखी हूँ। वास्तव में दुख की जड़ क्या है कि ये भौतिक जगत ही दुख का घर है। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति को दुखी होना है, ये भौतिक जगत की वास्तविकता भगवान ने लिख कर दे दिया भगवत गीता में अनित्यम असुखम लोकम। हम भले अपने प्रयासों से इस जगत को कितना ही आनंददायक बनाने का प्रयास करें, मगर क्योंकि ये जगत है ही दुखमयी तो क्या कर सकते हैं। अगर आप इस भौतिक जगत में रहकर दुखी ना होने का स्वप्न देख रहे हो तो वो कैसा है जानते हैं, कि आप एक समुद्र के अंदर रहना चाहते हो और समुद्र के अंदर रहकर भी फीकना नहीं चाहते हो, बोलो संभव है। या भौतिक जगत को कहा गया है संसार धावानलय, ये जो संसार है वो धावानल है, संसार जो है वो दुखों का समुद्र है, संसार सागर भी ये दुखों का समुद्र है, और आप सोचते हो कि इस भौतिक जगत में रहकर मैं दुखी ना हूं, इट इज इम्पॉसिबल। चाहे
आप किसी भी स्टेज पर पहुंच जाओ, चाहे आपको भौतिक जगत का सारा वैभव प्राप्त हो जाए, सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए, सारा बल प्राप्त हो जाए, इस भौतिक जगत में जो जो अट्रैक्शन की वस्तु है वो सब आप अपनी स्ट्रगल करते 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 प्राप्त कर लो, लेकिन फिर भी ये भौतिक जगत दुखों का घर है, भगवान ने लिख कर दे दिया, तो क्यों इस भौतिक जगत को आनंदमय बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं? इस भौतिक जगत को यदि आनंदमय बना सकते हैं तो उसका उपाय यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मटेरियल वस्तुओं को या मटेरियल सुविधाओं को, भौतिक सुविधाएं जो आप प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहते हो, उससे कभी भी आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो क्षीण हो जाएंगी। एक दिन ऐसा है, आपके मन में ऐसा है, कोई व्यक्ति छोटा बच्चा है, उससे पूछो बेटा अभी आप सुखी हो? तो बोला नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं डॉक्टर बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो जिस दिन वो डॉक्टर, अभी तो फिर समझो किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ, जो पहले से जिसका ये ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनना है तब मैं सुखी हो जाऊंगा, उससे पूछो क्या आप सुखी हो? वो बोलेगा नहीं, किसी अच्छी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती तो सुखी हो जाता। वो और अच्छी हॉस्पिटल के डॉक्टर से जाके पूछो आप सुखी हो? बोलेगा नहीं, यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम इस भौतिक जगत का एक तथ्य है, यह भौतिक जगत जो है वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स को मिलाकर बनाया गया। इसे इसको कहा जाता है कुंठा, और इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम। इस संसार में दुख देने वाली दुर्गा मैया है, उनके हाथ में त्रिशूल होता है, और त्रिशूल के अंदर तीन ऐसे शूल बने होते, शूल यानी कांटे, तीन कांटे बने हुए होते हैं, और इन तीन कांटे, तीन त्रिशूल के द्वारा वो पूरे इस भौतिक जगत को दुख प्रोवाइड कर रही होती है। ये तीन कांटे कौन से हैं? आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। भौतिक जगत में और कोई दुख आपको हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आपके साथ साथ चलता है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो जरूर बढ़ता है, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन समाप्त होता है तो वो बड़ा होता है, दूसरा दिन, एक साल समाप्त होता है तो इसका मतलब है उसके जीवन का एक साल समाप्त हो गया। और हम कितने मूर्ख हैं कि जैसे एक साल समाप्त होता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, वास्तव में तो वो जब ये एक साल समाप्त होता है ना, तब हमको बैठ के दुखी होना चाहिए। क्या दुखी होना चाहिए? कि जीवन का एक साल समाप्त हो गया और अभी तक मैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाया, अभी तक भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है, अभी तक कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, अभी तक मेरी माला सही नहीं हो रही है, अभी तक मेरा अध्ययन सही नहीं हो रहा है, कृष्ण की ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, भगवत सेवा नहीं हो रही है, गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, पूरा साल बीत गया। हर साल जब एक जैसे दिन समाप्त होता है ना, रात को दुखी होना चाहिए कि एक दिन समाप्त हो गया और मैं मेरी सेवा नहीं कर पाया, कृष्ण की और अपना आकर्षण उत्पन्न नहीं कर रहा, अभी तक भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं हुई, कब करूंगा, तो दुखी होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे समय समाप्त होता है, एक साल होता है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जन्म के साथ बड़ा होना, बड़े होने के साथ बीमार होना, बूढ़ा होना और अंत में मृत्यु, ये संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका यह तो है ही है, उनके साथ ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो साथ साथ में चलते हैं, और उसके साथ बोनस में तीन दुख, वो हर व्यक्ति के साथ आदिदैविक, आदिदैविक यानी जो देवताओं की ओर से हमें कष्ट मिलते हैं, कभी बहुत तेज वर्षा आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, कभी सूर्य मतलब बहुत ज्यादा तपिश पैदा होना, कभी बहुत तेज सर्दी आ जाना, आदिदैविक, आदि भौतिक यानी जो अलग दूसरे जीवों के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं, मक्खी मच्छर, या फिर ये कि हमारे पड़ोसियों के द्वारा, हमारे अपने रिश्तेदारों के द्वारा, सास को बहू से, बहू को सास से, पुत्र को पिता से, पिता को पुत्र से, माता को बच्चों से और पति से, इन सब से जो दुख मिल रहे हैं वो, और आध्यात्मिक दुख जो चिंता करके हम अपने आप को दे रहे होते हैं कि ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या, मतलब इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनके साथ ये सात दुख तो कंपलसरी हैं।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये दुख देने वाले कौन है? दुर्गा जी का डिपार्टमेंट है, वो इस भौतिक जगत में जितने भी जीव आए हैं उनको इससे संताप देती हैं। देती क्यों है? क्योंकि वो हमें यह रियलाइज कराती हैं कि यह भौतिक जगत आपके रहने की जगह नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात यह जगत अनित्य है तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति, इसे हमने 5.22 में पढ़ा, न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत के आनंद से आनंदित होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि क्योंकि वो जान जाता है, वो बुद्धिमान है, वो जान जाता है कि यह संसार तो दुखमय है, जो भी सुख प्राप्त करता हूँ उसके साथ कोई ना कोई दुख लिपटा हुआ होता है, तो मुझे इस भौतिक जगत के इस दुखमय भौतिक जगत से निकल के किसी ऐसी जगह की तलाश करनी है जहां पर दुख ना हो, जहां पर कष्ट ना हो, जहां पर नित्य सुख मिले। तो इसी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, नित्य तथा मिथ्या में अंतर है, यह संसार अनित्य है किंतु एक दूसरा संसार है जो नित्य है, और यह संसार दुखमय है किंतु एक दूसरा संसार है जो नित्य आनंदमय है। तो वास्तव में व्यक्ति को उस जगह की तलाश करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, आगे हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, उसमें भगवान बहुत ही सुंदर एक उल्टे वृक्ष के विषय में बताते हैं। उल्टा वृक्ष है, भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, वो एक उल्टे वृक्ष की तरह है। ऊर्ध्वमूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्नांसि यस्य प्राणाय यस्तम वेद स वेदवित्। एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और जो इसको जानता है वही वेदों का जानने वाला है। फिर भगवान ने उस वृक्ष के विषय में बताया, आचार्य श्री प्रभुपाद जी समझाते कि ये जो भौतिक जगत है ना, वो उल्टा वृक्ष है, क्योंकि वास्तविक आनंद जो है वो आध्यात्मिक लोक में है, लेकिन जिस प्रकार से एक नदी के किनारे पर वृक्ष उगता है तो नदी के अंदर केवल उसकी छाया रिफ्लेक्शन ही दिख रहा होता है, उसी तरह आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है इस भौतिक जगत में केवल उसका रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है। इस भौतिक जगत में जो भी सुख आप सोच रहे हो कि ये सुख है मुझे इससे प्राप्त हो जाएगा, वो अनित्य है। वो तो समझो ऐसे है जैसे छाया को आप पकड़ो, आप देख रहे हो समुद्र में, नदी में बहुत ही सुंदर वृक्ष है और उसका एक फल आप तोड़ना चाहते हो, जैसे ही नदी में छलांग लगाते हो हाथ में फल आता नहीं बल्कि आप ही डूब जाते हो। तो उसी तरह से अगर आपको वास्तविक सुख चाहिए तो नदी के अंदर नहीं, जो बाहर वृक्ष देखा है उसके में से फल निकालना पड़ेगा। इसे भगवान कहते हैं 15.33 में बहुत ही सुंदर बताते हैं, भगवान कहते हैं न रूपमसीह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशस्त्रेण दृढे न चित्वा। वैसे तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, लेकिन अब क्योंकि इस वृक्ष का न अंतो न साधे न च संप्रतिष्ठा, कुछ है ही नहीं तो समझ नहीं पाओगे। समझना छोड़ दो, काम करो कि करना क्या है। भगवान कहते हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम, अब इस जो बहुत ही दृढ़ जड़ों वाला जो वृक्ष है उसको क्या करो, असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा, असंग के अनासक्ति के डिटेचमेंट के हथियार से इस दृढ़ वृक्ष को काटो, और फिर क्या करो, दृढ़ वृक्ष को अभी देखो भगवान हमें क्या बता रहे, अनित्यम असुखम लोकम। अब पता चल गया कि इस भौतिक जगत में, क्योंकि अब भी जरूरी नहीं है, कोई कोई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमें तो कोई भी दुख नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगलो है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब सही तो जा रहा है, माई लाइफ इज गोइंग एकदम परफेक्ट, है ना, कोई ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये भगवान ने लिख कर दे दिया कि यह जगत जो है वो अनित्य है और असुख है, तो फिर क्या आप भगवान की बात पर विश्वास ना करके कोई ना कोई दुख आने के लिए प्रतीक्षा करोगे, जब ठोकर लगेगी उसके बाद कहोगे कि हाँ कृष्ण तुम सही कह रहे थे। अब कृष्ण ने कह दिया है कि इस भौतिक जगत में जो भी आनंद आपको प्राप्त होता है वो अनित्य है। आज हो सकता है कि आप सुखी हो सकता है कि आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है आपके पास सुख संपत्ति हो, लेकिन क्योंकि यह भौतिक जगत आनंद से रहने की जगह ही नहीं है, ये भगवान का स्टेटमेंट, ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है और वो कह रहे हैं कि मैंने इसके अंदर सुख नहीं रखा है, ये जो सुख तुम्हें रियलाइज हो रहा है वो तो केवल दुख कम होने के कारण फील हो रहा है कि ये दुख नहीं है, सुख है। ये जो दुख, क्योंकि और जब दुख तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब तुम इतना दुखी हो जाओगे और फिर तब तो क्या हो जाएगा, अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगी, और फिर और अगर जिस चीज से अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगी तो एक दिन क्या आएगा, वो चीज आपसे छीन ली जाएगी। और दूसरा तो छोड़ दीजिए, भगवान कहते हैं और कोई छीने ना छीने, मैं आ जाऊंगा छीनने के लिए। मृत्यु सर्व हरस्याह, मैं मृत्यु बनकर आऊंगा और तुमने सारे जीवन में इतनी मेहनत के साथ जो जो भी कमाया है वो सब छीन लूंगा, यहाँ तक कि पालन पोषण करता हुआ ये जो देह है तुमने इसको कितना सुंदर बनाया है उसको भी जलाकर राख कर दिया जाएगा। कहाँ सुख रहा? जो जो वस्तुएं, जो जो व्यक्ति आपने इस भौतिक जगत से प्राप्त किए हैं वो इस भौतिक शरीर के कारण, जब आपका शरीर ही जला दिया जाएगा आपकी आत्मा फिर क्या करेगी इस भौतिक जगत में? हम ये शरीर हमें मिला है, हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है ये शरीर, और इस शरीर के द्वारा हम किस तरह से इसका सदुपयोग करते हैं वो भगवान बता रहे हैं। और भगवान कहते हैं क्या करो आगे 15.4 में कहते हैं, तत् पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुरा। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्। फिर जब तुम असंग के शस्त्र से इस दृढ़ जड़ों वाले वृक्ष को काटो, फिर एक ऐसा स्थान ढूंढो, एक ऐसी जगह ढूंढो यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूया, जहां पर जाकर तुम्हें पुनः इस दुखमय संसार में आना ना पड़े, और फिर वहां पर तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की शरण में जाओ। यत्र प्रवृत्ति प्रसिद्धा प्राया, जिससे इस अनादिकाल से संसार उत्पन्न होता है और फिर उन्हीं के अंदर लीन हो जाता है। तो इस भौतिक जगत का तथ्य क्या है? अनित्य है, असुख है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, भगवान पहले तुमने कहा कि मैं पिता हम अस्य जगतो माता दाता पिता मां, मैं इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है उनका पिता हूँ, क्या कोई पिता अपने बच्चे को दुखमय जगह पे भेजेगा? कोई ऐसी जगह पे भेजेगा जहां पर केवल दुखी दुख हो, असुखम, और अनित्य जगत में कोई भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो क्या आप इतने क्रूर हो जो हमको यहाँ पर भेज दिया? तो भगवान कहते नहीं, मैंने आपको भेजा नहीं है, आप यहाँ पर आए हो अपनी इच्छा से, लेकिन मैं तो तुम्हें वापिस अपने धाम में बुलाने का उपाय बता रहा हूँ कि बेटा इस भौतिक जगत में तो केवल दुख ही दुख है, तो क्या करो, इमं प्राप्य भजस्वमाम। तुमने अपनी भूल के कारण इस भौतिक जगत में जन्म ले लिया है, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण, प्रभुत्व जताने की कामना के कारण तुम इस भौतिक जगत में गिर गए हो, तो अब तुम्हें वापस आने का तरीका बता रहा हूँ। कोई लोग सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में ये प्राप्त हो जाओ तो सुखी हो जाऊंगा, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी फकीर के पास जाते हैं, किसी देवता के पास जाते हैं कि किसी तरह से मेरा ये दुख दूर कर दो तो मैं सुखी होकर जीऊं। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ भी प्राप्त हो जाएगा सुखी नहीं होके, ये मेरी गारंटी है। मैंने भौतिक जगत तो जो अपराधी हैं, जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, जो मुझसे विरोध करते हैं, उनके लिए एक जेल बनाई है, और जेल में रहकर कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो, इसलिए क्या करो, एमं प्राप्य भजस्वमाम। इस भौतिक जगत में आ गए हो तो यहाँ पर आके केवल एक ही काम करना है, भगवान आखिरी गंतव्य बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तो भगवान को खत्म कर देनी है भगवत गीता। ये जो नवा अध्याय है ना, अभी इसका एक श्लोक रह गया है और यहाँ तक कंप्लीट हो गया भगवान का मैसेज। भगवान ने अपनी तरफ से जो कुछ बताना था ना, वो सब बता दिया। आगे तो भगवान बस हम जैसे जो नास्तिक जीव है ना, उनकी उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए और अपने ऐश्वर्य को दिखाएंगे, विश्व रूप को दिखाएंगे, वैभव को दिखाएंगे। बाकी भगवान का अंतिम उपदेश अभी जो हम कल श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे ना, वहां तक ही भगवान ने अपना अंतिम उपदेश दे दिया और वो इसी श्लोक को बाद में भी बताएंगे। लेकिन क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए उन्हें और बोलना पड़ता है। लेकिन भगवान ने बताया है कि आप इस भौतिक जगत में आ गए हो तो एक ही काम करना है, क्या? इमं प्राप्य भजस्वम। इस भौतिक जगत में आकर बस खाली एक काम करना है, मेरा भजन करो। यदि तुम मेरा भजन करोगे तो तुम भले इस भौतिक जगत में भी रहते हो, फिर भी इस जगत के दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। जिस प्रकार भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कंवल होता है, कंवल भले ही कीचड़ में रहता है परंतु हमें कभी भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। उस तरह जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का भजन करता है, वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी दुख उसे स्पर्श नहीं करते। दुखों में भी वो आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वो यह रियलाइज करता है कि इन दुखों के कारण तो मैं भगवान की ओर भी ज्यादा निकट हो रहा हूँ। इसीलिए कुंती महारानी भगवान से बहुत ही सुंदर प्रार्थना करती है। वे कहती है, विपदः संतुतः साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो सारी विपदाएं संस्तुत, वो सारी विपदाएं बार बार दो, बार बार दो। कृष्ण बोले, क्यों बुआ, आप दुख क्यों मांगते हो? तब कुंती महारानी कहती है कि जब दुख होता है ना तो आपका स्मरण बहुत सरल हो जाता है, तो फिर हृदय से आपका स्मरण होता है और जब आपका स्मरण होने लगता है, आपका भजन होने लगता है, तब न पुनर्भव दर्शनम, फिर दुख फील नहीं होता है। दुख तो इस भौतिक जगत में होगा ही होगा, तो फिर वो दुख भी आनंद में परिवर्तित हो जाता है जिसके अंदर हम कृष्ण को स्मरण कर रहे होते हैं, कृष्ण का भजन कर रहे होते हैं। इसी भगवान कहते हैं इमं प्राप्य भजस्वम। और जब जीव भगवान की भक्ति करता है तो उसके सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने अंत में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, वास्तव में भगवान के चरणों को स्पर्श करके तब तक भगवान के नाम का जप करना चाहिए जब तक कि दुखमय संसार से भगवान निकाल नहीं देते। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिससे वह सदैव सुखी रह सके, भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझी जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। केवल भगवत भक्ति एकमात्र वह उपाय है जिससे आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हो। और कैसे करना है तो शास्त्र कहता है, चैतन्य महाप्रभु बताते, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। तो प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, हृदय से भगवान के इन लीलाओं को श्रवण करना है, ताकि हम इस दुखमयी संसार से आजाद होकर अपने वास्तविक धाम को, वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।